समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी।
दोस्तों, कड़ी सर्दियों के बाद सुहानी वासंती सुबहों के सिलसिले को कुछ और पुरसुकून और यादगार बनाने के लिए आ गए हम लेकर आज सवेरे का ये अंक एफएम गोल्ड पर। दोस्तों, मनोरंजन और जानकारियों भरे हमारे सफर में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कार्यक्रम में हम आपको देंगे देश और दुनिया के समाचार, महानगरों का जानेंगे हाल, बात होगी मौसम की, इतिहास में दर्ज कुछ घटनाओं का जिक्र करेंगे जिनका है रिश्ता आज की इस तारीख से, और याद करेंगे कुछ जानी मानी हस्तियों को भी जिनका है आज जन्मदिन, जयंती या पुण्यतिथि। और आज के आपके हम सफर हैं मैं यानी मुनीश शर्मा और आपकी जानी मानी हर दिल अजीज, आप लगातार उन्हें सुनते हैं, रेनू कटारिया। रेनू जी नमस्कार।
Namaskar Munish and a very warm welcome to all our listeners tuned into Akashvani FM Gold on 100.1 megahertz and the Akashvani network. And dear listeners, as Munish has already told you and informed you that we are going to be giving you the latest in national and international news, metro city updates as well as some historical information related to this day, that is the 24th of February. So let's begin with the news first.
जी हाँ, सबसे पहले समाचार। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयुक्तों का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित होगा। ये गोलमेज सम्मेलन 27 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद आयोजित हो रहा है। पिछला सम्मेलन हुआ था 1999 में। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे और इस अवसर पर निर्वाचन आयुक्त डॉ सुखबीर सिंह संधू और डॉ विवेक जोशी भी उपस्थित रहेंगे। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य निर्वाचन आयुक्त अपने कानूनी और तकनीकी विशेषज्ञों के साथ सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और इसके अलावा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारी भी इस सम्मेलन में शामिल होने जा रहे हैं।
President Draupadi Murmu will be on a four-day visit to Maharashtra, Jharkhand and Rajasthan from today. The President will inaugurate the nationwide campaign Saving Lives and Building a Healthier Bharat being organized by P.D. Hinduja Hospital at Lok Bhavan, Mumbai today. Tomorrow, the President will grace the National Arogya Fair 2026 being organized by the Union Ministry of Ayush at Shegaon, Buldhana. She will also grace the state-level launch of Golden Era of Maharashtra through Unity and Trust organized by Brahma Kumaris in Nagpur tomorrow.
सरकार ने नई दिल्ली में आयोजित छठी केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के तहत 2,88,000 से ज्यादा मकानों को मंजूरी दी है। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने बताया है कि ये नए स्वीकृत मकान 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुमोदित किए गए हैं, जिनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और जम्मू कश्मीर शामिल हैं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि इस योजना के तहत अब तक स्वीकृत मकानों की कुल संख्या 13,61,000 से ज्यादा हो गई है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि ये स्वीकृतियां आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के शहरी परिवारों के लिए सम्मानजनक और किफायती आवास उपलब्ध कराने की सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।
Union Textiles Minister Giriraj Singh said that government has aimed to achieve $10 billion handloom exports by 2031. Addressing the 43rd Foundation Day of National Handloom Development Corporation, NHDC, in New Delhi yesterday, Mr. Singh highlighted the pivotal role of the handloom sector in sustaining livelihoods and promoting indigenous production systems. He added that country's handloom sector is being transformed into global movement under the leadership of Prime Minister Narendra Modi.
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के निष्क्रिय पड़े खातों में 1,000 रूपये तक की राशि रखने वाले ग्राहकों को धनराशि वापस करने का निर्णय लिया है। मंत्रालय ने बताया कि राशि सीधे ग्राहकों के आधार से जुड़े बैंक खाते में अंतरित कर दी जाएगी। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि लाभार्थियों को रिफंड प्रक्रिया शुरू करने के लिए कोई भी दावा दाखिल करने या दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी। लगातार 3 वर्षों तक कोई योगदान या लेन देन न होने पर ईपीएफओ खाता निष्क्रिय हो जाता है और वर्तमान में 1,000 रूपये तक की राशि वाले 6 लाख से ज्यादा निष्क्रिय खाते मौजूद हैं।
एंड मूविंग ऑन टू द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स मनीष, in the ICC Men's T20 Cricket World Cup, West Indies defeated Zimbabwe by 107 runs in the Super 8 Group 1 clash at the Wankhede Stadium in Mumbai last night. Against a target of 255 runs set by West Indies, Zimbabwe scored only 147 runs in 17.4 overs. Shimron Hetmyer was declared player of the match today. England will take on Pakistan in a Super 8 Group 2 match of the ICC Men's T20 World Cup.
और आइए अब रुख करते हैं महानगरों की खबरों की ओर और सबसे पहले बात दिल्ली की। दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े एक आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है जिसका संचालन बांग्लादेश से किया जा रहा था। नई दिल्ली में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रमोद कुमार कुशवाहा ने बताया कि कोलकाता और तमिलनाडु में एक साथ चलाए गए अभियानों में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और दिल्ली नगर पालिका परिषद एनडीएमसी द्वारा राजधानी के चाणक्यपुरी क्षेत्र में ट्यूलिप उत्सव 2026 का उद्घाटन किया गया है। इस अवसर पर नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष केशव चंद्रा ने कहा कि वर्तमान में राजधानी के प्रमुख एनडीएमसी क्षेत्रों में लाल, सफेद, पीले, बैंगनी, गुलाबी, नारंगी और द्विरंगी ट्यूलिप्स की आकर्षक छटा छाई हुई है और साथ ही ये पुष्प सज्जाएं बड़ी संख्या में आगंतुकों को भी आकर्षित कर रही हैं। ट्यूलिप उत्सव में नीदरलैंड्स की राजदूत महामहिम मारिसा गेराड्स और परिषद सदस्यों सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे।
जी बिल्कुल मुनीश, आपने ट्यूलिप्स की बात करी है तो कल घर वापस जाते टाइम मैंने भी ट्यूलिप्स को देखा और शांति पथ पर पूरा टाइम वहां पर स्पेंड करा और व्हाट अ साइट इट वाज एंड व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर्स देयर आर।
इंडीड, व्हाट अ साइट टू बिहोल्ड, ट्यूलिप्स। एंड आई थिंक इट्स अ रीसेंट फिनोमेना इन दिल्ली।
इन दिल्ली यस,
पीपल यूज्ड टू विजिट ईदर स्पेन और
हॉलैंड, नेदरलैंड जाते थे,
श्रीनगर। यस
जी बिल्कुल, श्रीनगर जाते थे। बट अब वो दिल्ली में मिल रहा है हमें देखने के लिए, तो व्हाई नॉट, वी शुड ऑल गो एंड विजिट दिस। So, moving on to the next metro, which is Chennai, Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin has asked the union government to take diplomatic steps to stop the arrest of fishermen and secure the early release of those detained along with their boats. In a letter to External Affairs Minister S. Jayashankar, he said that the Sri Lanka Navy arrested 12 fishermen and seized a mechanized boat from Rameshwaram on 22nd February. The fishermen had left from Pamban Fish Landing Centre in Ramanathapuram district. The chief minister said repeated arrests by Sri Lankan authorities are a serious concern. He added that 259 Tamil Nadu fishing boats and 116 fishermen, including those in this latest incident, are currently in custody. Aur ek aur news hai Chennai Metro se hamare paas. India Post Chennai City Region held the Regional Excellence Awards 2024-25 at Victoria Public Hall in Chennai yesterday. During the financial year 2024-25, divisions, officers and staff were recognized for their strong performance in meeting targets across different areas. A total of 262 awards were given under 77 categories for their excellent work and contribution.
और अब रुख करते हैं दोस्तों मुंबई का
जी।
जापान के महावाणिज्य दूत यागी कोजी और फिनलैंड के महावाणिज्य दूत एरिक ऑफ हॉलस्ट्रॉम और चीन के महावाणिज्य दूत किनजी ने मुंबई के लोक भवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मुलाकात की। जापान ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे, अटल सेतु और मुंबई मेट्रो लाइन 3 जैसी परियोजनाओं में सहयोग पर प्रकाश डाला। फिनलैंड ने बताया कि उसके राष्ट्रपति मार्च की शुरुआत में मुंबई का दौरा करेंगे और चीन ने शिक्षा, संस्कृति और व्यापार में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की।
Moving on to Bengaluru, the Greater Bengaluru Authority or GBA along with NIC and City Corporation GPS teams has found property tax evasion in about 13,600 properties during the second round of property GPS verification. Using GPS data, property usage details and drone images, officials found differences in declared built-up areas and actual usage. Recovery notices worth about rupees 318 crore have been issued. In total across two rounds, rupees 688 crore has been identified from 23,600 properties. The verification process includes GPS data collection, usage checks, back-end validation, quality checks and comparison with drone data. Teams are surveying nearly 10,000 properties every day to ensure tax compliance.
और अब ये खबर कोलकाता से, जहां लोगों को बिजली गिरने के दौरान सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है। हालांकि आने वाले दिनों में तापमान में तो कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है, लेकिन अलीपुर मौसम विभाग ने कोलकाता और आसपास के जिलों जिनमें उत्तर और दक्षिणी 24 परगना तथा पूर्वी और पश्चिमी मेदिनीपुर शामिल हैं, वहां हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारों का पूर्वानुमान लगाया है। मौसम में ये बदलाव नमी और पश्चिमी विक्षोभ के कारण है और किसानों को वहां ये भी सलाह दी गई है कि वो नुकसान से बचने के लिए पके हुए आलू की कटाई जल्द कर लें।
जी, और द लास्ट न्यूज दैट आई हैव इज फ्रॉम हैदराबाद मेट्रो। द तेलंगाना डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर हैज साइंड अग्रीमेंट्स विद जेएमआर एयरपोर्ट अथॉरिटी, Fiki and Azim Premji University to support orphaned youths and Anganwadi teachers. From March 2026, orphaned youth living in state-run Shakti Sadans will receive technical training at the GMR Aero Academy in Shamshabad. The training will focus on airport operations, cargo and ground handling to help them get jobs in private and international aviation companies. Fiki will provide industrial and soft skills training to orphaned girls studying in polytechnic colleges to improve their job opportunities. Azim Premji University will train Anganwadi teachers in English and preschool teaching methods to improve early education. Women and Child Welfare Minister Sitakka said the government's goal is not just to provide shelter but to ensure long-term rehabilitation. Through these partnerships, the state aims to help vulnerable youth become self-reliant and secure a better future.
और दोस्तों, आज सवेरे में बात अब महानगरों के मौसम की। राजधानी दिल्ली में आज सुबह हल्का कुहासा छाए रहने की संभावना है। वहीं आज का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का है अनुमान। मुंबई में आसमान रहेगा साफ, न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम जा सकता है 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास। जबकि कोलकाता में आज तेज हवाओं के साथ बौछारों का भी अनुमान है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रह सकता है 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास।
यस, एंड मूविंग ऑन टू चेन्नई, इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव फॉग और मिस्ट इन द मॉर्निंग एंड पार्टली क्लाउडी स्काई लेटर। द मिनिमम टेम्परेचर वाज 25 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 34 डिग्रीज। Bengaluru is expected to have partly cloudy sky. The minimum temperature was 18 degrees Celsius and the maximum will be around 32 degrees. And Hyderabad is expected to have generally cloudy sky with possibility of development of thunder or lightning. The temperature will hover between a minimum of 22 degrees and a maximum of 32 degrees Celsius.
और समाचार कक्ष से आ रही है ये खास खबर
जी
श्रोताओं के लिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कल से इसराइल की दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री का तेल अवीव में अपने इसराइली समकक्ष श्री बेन्यामिन नेतन्याहू के साथ व्यापक चर्चा करने का कार्यक्रम है। इसके बाद यरूशलम में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा न सिर्फ कूटनीति का हिस्सा है बल्कि दो प्राचीन सभ्यताओं के पुनर्मिलन का प्रतीक भी है। इस यात्रा का सबसे मानवीय पहलू छिपा है यरूशलम की गलियों में बसने वाले भारतीय समुदाय में, जो दशकों से वहां भारत की विरासत को संजोए हुए है। तो आइए सुनते हैं यरूशलम से हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट।
इसराइल में भारतीय समुदाय एक जीवंत और विविध समूह है, जिसमें लगभग 85,000 यहूदी भारतीय मूल के लोग और लगभग 18,000 से 20,000 भारतीय नागरिक विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं। इसराइल में भारतीय यहूदी समुदाय का इतिहास कई दशकों पुराना है। इनमें से अधिकांश लोग 1950 और 1960 के दशक में भारत से इसराइल चले आए थे। जो ज्यूस लोग यहूदी लोग भारत से यहां आए हैं, वो भारत की अपनी अच्छी यादों को साथ में लेकर आए हैं। इसराइल के समाज में वे पूरी तरह से यहां एकीकृत हो गए हैं और विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान भी कर रहे हैं। इसराइल में जो भारतीय नागरिक हैं, वो अलग अलग क्षेत्रों में कार्यरत है, जिसमें हेल्थ देखभालकर्ता के रूप में, केयर गिवर्स में, डायमंड के ट्रेडर्स हैं, आईटी पेशेवर में भी बहुत लोग हैं और यहाँ छात्र अभ्यास के लिए भी आते हैं। इसराइल की अर्थव्यवस्था में ये सब यहूदी और अन्य लोग महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और देश की सांस्कृतिक विविधता को भी बढ़ावा दे रहे हैं।
और दोस्तों, कहते हैं कि अगर हम इस इतिहास को नजरअंदाज कर देते हैं तो इतिहास भी हमें आगे चलकर कर देता है नजरअंदाज। इसलिए बहुत जरूरी है इतिहास की जानकारी। तो आइए अब जानते हैं कि आज की तारीख इतिहास में क्या जगह रखती है।
जी हाँ, लेट्स बिगिन विद द ईयर 1582। मुनीश, आज ही के दिन पोप ग्रेगरी द 13th इशूड अ पेपल बुल टू इंट्रोड्यूस द ग्रेगोरियन कैलेंडर।
और 1739 में आज ही की तारीख को करनाल में हुए युद्ध में फारस पर सत्तासीन नादिर शाह ने मुगल शहनशाह शाह आलम की सेना को हरा दिया था।
In 1803, on this day, that is the 24th of February, the U.S. Supreme Court established the principle of judicial review in the Marbury versus Madison ruling. And on the same day in the year 1822, the first Swami Narayan Mandir opened in Ahmedabad, Gujarat.
जी हाँ, और 1821 में मेक्सिको ने इसी तारीख को स्पेन से आजादी हासिल की थी।
1826, the Treaty of Yundabo ended the first Anglo-Burmese War and brought Assam and Manipur under British control.
और दोस्तों, आप जानते हैं कि टीबी संक्रामक बीमारी जो है उसकी पहचान आज ही की तारीख को 1882 में की गई थी।
जी, in 1868 on this day the US House of Representatives voted to impeach President Andrew Johnson.
और 2001 में पाकिस्तान भारत से परमाणु निवारण के लिए वार्ता को तैयार हुआ था।
1944 on this day the Central Excise and Salt Act was enacted in India, marking the origin of Central Excise Day. In 2008, on this day, Fidel Castro retired as the president of Cuba after nearly 5 decades in power.
और रेनु, आइए बात करते हैं।
आई थिंक आई हैव, हाँ बिल्कुल चलेंगे हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट पर। दो बहुत अच्छे इवेंट्स जो आज के दिन हुए थे, मैं जरूर बताना चाहूंगी,
हम कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते।
जी, सो 2010 ऑन दिस डे सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड द फर्स्ट डबल सेंचुरी इन मेल ओडीआई क्रिकेट हिस्ट्री अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। बहुत बड़ा दिन था। एंड आज ही के दिन इन द ईयर 2022 रशिया लॉन्च्ड अ फुल स्केल मिलिट्री इन्वेजन ऑफ यूक्रेन।
वी स्टिल गोज ऑन।
यस,
जी हाँ। और रेनु, तो आइए अब याद करते हैं कुछ जानी मानी हस्तियों को जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
जी,
तो दोस्तों हम बता दें, आज पुण्यतिथि है भारतीय कॉमिक्स के पितामह कहलाने वाले अनंत पै की, जिन्होंने बच्चों और बड़ों दोनों के लिए मशहूर कॉमिक्स अमर चित्र कथा की शुरुआत की। 1967 में शुरू की गई इस कॉमिक्स की श्रृंखला के जरिए उन्होंने परंपरागत भारतीय कहानियों को लोगों तक पहुंचाया। दरअसल मुंबई विश्वविद्यालय से शिक्षा हासिल करने के बाद वो टाइम्स ऑफ इंडिया के कॉमिक डिवीजन में आए और वहाँ उन्होंने परिचय कराया हमारा फैंटम और मैंड्रिक जैसे भारतीय संस्करण में आए कॉमिक्स से। और फिर इंडिया बुक हाउस के साथ 1967 में शुरू हुई थी अमर चित्र कथा की श्रृंखला, जिसमें जानी मानी भारतीय और विश्व भर की हस्तियों के बारे में उन्होंने रेखा चित्रों के माध्यम से बड़े ही रोचक तरीके से हमें वो जानकारी दी।
जी बिल्कुल, जिस तरह आप बता रहे हैं कि फैंटम के बारे में उन्होंने जानकारी दी थी, तो फैंटम से ही रिलेटेड आई हैव कैरेक्टर जिन्होंने प्ले करा था, एक एक्टर जिनका नाम है विलियम जॉर्ज जेन जूनियर, जिनका आज बर्थडे है। हु इज एन अमेरिकन एक्टर, पेंटर एंड प्रोड्यूसर। ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज विलेनस रोल एज केल डॉन हॉकले इन द एपिक रोमांटिक डिजास्टर फिल्म टाइटैनिक, जो कि 1997 में आई थी। हिज अदर films include Back to the Future, its sequel Back to the Future Part 2, Dead Calm, and television series Twin Peaks, Tombstone, Demon Knight, Phantom and the video game Kingdom Hearts. और मुझे याद है जब हम इनके बारे में बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि आपके पास भी कुछ है किसी के बारे में आप बताएंगे हमारे लिसनर्स को जो कि Phantom से related होंगे.
जी हाँ, playing Phantom, a superhero then a villainous character in the movie you just quoted Titanic.
Yes.
It shows what a versatile actor he was.
Yes, yes. जी बिल्कुल.
और आज ही है पुण्यतिथि मशहूर भारतीय अभिनेत्री श्रीदेवी की, जिनका पूरा नाम था श्रीअम्मा यंगर अयप्पन. जन्म हुआ था उनका 13 अगस्त 1963 को तमिलनाडु में, जबकि इस दुनिया को कहा अलविदा उन्होंने 24 फरवरी 2018 को. हिंदी के अलावा आपने तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया और अपने सिने करियर की शुरुआत की 1979 में फिल्म 16वां सावन से. लेकिन बॉलीवुड में उन्हें सही पहचान मिली थी फिल्म हिम्मत वाला से, जिसमें जितेंद्र थे, शायद आपको याद हो.
जी बिल्कुल.
और इस फिल्म के बाद वो हिंदी सिनेमा की सुपरस्टार अभिनेत्रियों में शुमार हो गई. 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिला और 2013 में भारत सरकार ने पद्मश्री से भी उन्हें नवाजा. तो आइए सुनते हैं दोस्तों, उन्हीं पर फिल्माए गए कुछ बड़े ही यादगार गीतों की ये छोटी सी झलक.
जी. And Munish, you know, these are one of those few numbers that we remember. पर उनका एक और गाना from the movie Mr. India, अगर आपको याद हो, हवा हवाई. You know what, this dance number हवा हवाई मुझे याद आ रहा है, it was cited by one of the Indian newspapers as one of the most unforgettable numbers of Sridevi, which also became a popular nickname for the actress.
Yes, yes. Miss Hawa Hawaii.
जी जी जी. तो अगर आप हवा हवाई बोलते तो सबको पता चल जाता था कि इशारा किसकी तरफ जा रहा है. जी. सो टुडे वी आर पेइंग ट्रिब्यूट्स टू ललिता पवार, हु वाज अ प्रोलिफिक इंडियन एक्ट्रेस हु लेटर बिकेम फेमस एज अ कैरेक्टर एक्ट्रेस अपियरिंग इन ओवर 700 फिल्म्स इन हिंदी, मराठी एंड गुजराती सिनेमा, वेयर शी गेव हिट सच एज नेताजी फालकर मेड बाय भालजी पेंडेरकर, न्यू हना पिक्चर्स, एंड हर अदर मेमोरेबल रोल्स वर इन द फिल्म्स अनाड़ी, श्री 420, मिस्टर एंड मिसेस 55, and not to forget the role of Manthara in Ramanand Sagar's television epic serial Ramayan. So here we're going to listen to this dialogue of Manthara telling Kekai about how, you know, Bharat should be the king. So yahan pe ek chota sa dialogue humne sampurna Ramayan mein se liya hai. So let's listen into Lalita Pawar playing the role of Manthara.
14 din se dekh rahi, tumhe kuch buddhi aayegi. पर नहीं आई.
तो कहना क्या चाहती है?
तुम तो खुशी में अंधी हो रही और तुम्हारे रास्ते में अंगारे बिछाए जा रहे हैं.
कौन बिछा रहा है?
कौशल्या क्या बकती है घर फोड़नी. घर तो जो का त्यों रहेगा, लेकिन इस घर में आज के बाद तुम कुछ न रहोगी.
क्यों?
कल से कौशल्या यहाँ सब कुछ होगी.
मुझे खुशी होगी,
उसका बेटा राम राजा बनेगा.
ये सबके लिए सौभाग्य की बात है.
लेकिन तुम्हारे लिए दुर्भाग्य की बात है।
मसखरा।
तो रेणु जी, जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी कृति जो है, जो पर्दे पर फिल्माई जाती है या किताबों में जिसको पढ़ करके हम आनंदित होते हैं, वो सिर्फ नायिकाओं से पूरी नहीं होती, उसमें खलनायिकाएं भी होती हैं। और खलनायिका के रूप में, हालांकि बहुत ही वर्सटाइल एक्ट्रेस थी अपने जमाने में, उन्होंने पूरा न्याय किया हर भूमिका के साथ, और इसके लिए तो हम उन्हें हमेशा याद करते हैं।
शी वाज यू नो द क्विंटेसेंशियल एक सास और एक वो एक विलेनस रोल में। हां जी, मतलब डायरेक्टर्स को पता होता था कि अगर ऐसा कोई रोल आ रहा है तो वो हमें ललिता पवार जी को ही देना है, और वो कितनी बखूबी से उनको निभाती थी पर्दे पर। जी बिल्कुल। सो मैं एक लाइन बोलूंगी और आप बताइएगा कि मैं किसके बारे में बोल रही हूं। Your time is limited, so don't waste it living someone else's life.
Well, I think by Steve Jobs.
जी, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। Today is the birth anniversary of Steve Jobs, who was an American business magnate, industrial designer, investor, and media proprietor. He was the chairman, chief executive officer, and co-founder of Apple Inc. और बहुत कुछ उनके नाम के बारे में हम लोग जानते हैं, उन्होंने क्या क्या किया था। So here, you know what, Manish, drawing from some of the most pivotal points in his life, Steve Jobs, the CEO and co-founder of Apple Computer and of Pixar Animation Studios, here he is urging the graduates to pursue their dreams and see the opportunities in life's setbacks, including death itself, at the university's 114th commencement on June the 12th, 2005. So here, let's listen into this small address of Steve Jobs to the graduating students of Stanford University.
On the back cover of their final issue was a photograph of an early morning country road, the kind you might find yourself hitchhiking on if you were so adventurous. Beneath it were the words, "Stay hungry, stay foolish." It was their farewell message as they signed off. Stay hungry, stay foolish. And I have always wished that for myself. And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you.
And today we are remembering Talat Mehmood, who was an Indian playback singer who is considered one of the greatest and most popular Indian male film song and ghazal singers. He was practically famous for singing soft and somber ghazals in his quiring and silky voice, romantic and tragic with the moods he liked most, and it was he who helped a great deal in shaping the style and method of modern ghazal singing in India during the 1950s and 1960s.
Mellifluous and melodious sound, reminding us of the times when melody was king. और दोस्तों, आज ही ये जयंती हिंदी सिनेमा के जाने माने अभिनेता जॉय मुखर्जी की, और आइए सुनते हैं उन पर फिल्माए गए कुछ यादगार गीतों की छोटी सी झलक।
जापान की ले गई दिल गुड़िया, जापान की पागल मुझे कर दिया ले गई दिल गुड़िया, जापान की ले गई दिल गुड़िया, जापान की पागल मुझे कर दिया पागल मुझे कर दिया।
और दोस्तों अब अनुमति दीजिए हमें ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की.
बट स्टे ट्यून फॉर कमिंग अप नेक्स्ट समाचार प्रभात और हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM. एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन. हैव अ सुपर्ब डे. नमस्कार.